अध्याय 18 राजमार्गों और सड़क के किनारे जाए। यह अध्याय लूका 4 आयत 1, लूका 14 आयत 12 से 24 पर आधारित है। उद्धारकर्ता एक फरीसी की दावत में एक अतिथि था। उन्होंने अमीरों के साथ साथ गरीबों के भी निमंत्रण स्वीकार किए और उनके रिवाज के अनुसार उन्होंने अपने सत्य के पाठ से पहले दृश्य को उससे जोड़ा। यहूदियों के बीच पवित्र पर्व उनके सभी मौसमों के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि धार्मिक और आनंददायक थे। ये उनके लिए शाश्वत आनंद का आशीर्वाद का एक प्रकार था। यह उनके लिए शाश्वत जीवन का आशीर्वाद था। महान दावत जिस पर वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठे थे, जबकि अन्य जातियों के बिना खड़े थे और लालसा भरी आंखों से देखा, एक विषय था जिस पर वे प्रसन्न थे। चेतावनी और निर्देश के पाठ जिसे मसीह देना चाहता था, उसने अब महान भोज के दृष्टांत से स्पष्ट किया। ईश्वर का आशीर्वाद वर्तमान और भविष्य के जीवन के लिए दोनों ने खुद को बंद करने के लिए सोचा। उन्होंने अन्य जातियों को परमेश्वर की दया से वंचित कर दिया। दृष्टांत द्वारा मसीह ने दिखाया कि वे स्वयं उस समय दया के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे थे। ईश्वर के राज्य के लिए आह्वान, उसने दिखाया कि दया का आमंत्रण ईश्वर के राज्य के लिए बुलाहट। उन्होंने दिखाया कि जो निमंत्रण उन्होंने दिया था, उन्हें उन लोगों के पास भेजा जाना था जिन्हें वे तिरस्कृत करते थे, जिससे उन्होंने उनके वस्त्र छीने थे जिन्हें वे कबूल करने वाले थे।
अपनी दावत के लिए मेहमानों को चुनने फरीसी अपने स्वार्थ के लिए सलाह ली थी। मसीह ने उससे कहा, जब तुम रात का खाना खाते हो तो ना अपने दोस्तों को बुलाओ, ना अपने भाइयों को, ना अपने घरवालों को और ना अपने अमीर पड़ोसियों को। ऐसा ना हो कि वे फिर से तुम्हारी बोली लगा दें और तुम पर फिर से हमला किया जाए। लेकिन जब तुम एक दावत बुलाऊं तो गरीबों, नौकरों, लंगड़े और अंधे को बुलाऊं और तुम धन्य हो जाऊं। वो तुम्हें दे नहीं सकते, क्योंकि तुम बस पुनरुत्थान पर दृढ़ हो जाओगे।
मसीह यहां उस निर्देश को दोहरा रहा था जो उसने इसराइल को मूसा के माध्यम से दिया था। उनके पवित्र भोजों में प्रभु ने निर्देशित किया था कि अजनबी, पिताहीन, विधवा जो द्वार के लिए भीतर है, वे आएंगे, खाएंगे और संतुष्ट होंगे। व्यवस्था विवरण 14 आयत 29। ये सभाएं इसराइल को वस्तुपाठ के रूप में होनी थी। इस प्रकार सच्चे अतिथि को आनंद का पाठ सिखाया जा रहा है। लोगों को शोक संतप्त और गरीबों की देखभाल करने के लिए पूरे वर्ष थे और इन पर्वों में एक व्यापक सबक था। इसराइल को दिया गया आध्यात्मिक आशीर्वाद अकेले अपने लिए नहीं था। ईश्वर ने उन्हें जीवन की रोटी दी कि वे इसे दुनिया को तोड़ कर दे।
ये काम उन्होंने पूरा नहीं किया था। मसीह के शब्द उनके स्वार्थ के लिए फटकार के थे। फरीसियों के लिए उनके शब्द विचलित थे। बातचीत की एक और चौनल में बदलने की आशा करते हुए उनमें से एक पवित्र भाव के साथ था, उसने कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। निश्चित था, उनका दृष्टिकोण उन लोगों के दृष्टिकोण के समान था जो आनंदित होते हैं कि वे मसीह द्वारा बचाए गए हैं, जिन पर मोक्ष का वादा किया जाता है। उसकी आत्मा बालम की तरह थी जब उसने प्रार्थना की, मुझे धर्मी लोगों की मृत्यु को मरने दे और मेरा अंतिम अंत भी उसके जैसा होने दो। गिनती 23 आयत 10। फरीसी स्वर्ग के लिए अपनी खुद की फिटनेस के विषय में नहीं सोच रहा था, लेकिन वो स्वर्ग में आनंद लेने की आशा करता था। उनकी टिप्पणी को दावत में मेहमानों के दिमाग को उनके व्यवहारिक कर्तव्य के विषय से दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने उन्हें वर्तमान जीवन को धर्मी के पुनरुत्थान के दूरस्थ समय तक ले जाने के लिए सोचा। मसीह ने ढोंग करने वाले को पढ़ा और उस पर अपनी आंखें तेज करते हुए उसने साथियों के सामने अपने वर्तमान विशेषाधिकार के चरित्र और मूल्य को खोला। उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनके पास भविष्य के आशीर्वाद में साझा करने के लिए उस समय कार्य करने का एक हिस्सा था।
एक निश्चित आदमी, उन्होंने कहा, एक महान व्यक्ति ने रात के खाने के लिए काफी लोगों को बुलाया। जब दावत का समय आया
तो मेजबान ने दूसरे संदेश के साथ अपने नौकर को अपेक्षित मेहमानों के लिए भेजा, आओ क्योंकि सभी चीजें तैयार है। लेकिन एक अजीब उदासीनता दिखाई दी। सभी ने एक सहमति के साथ बहाना बनाना शुरू किया। पहले ने कहा, मैंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है और मुझे इसे देखने की जरूरत है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने बहाना बनाया है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मैं उन्हें साबित करने जा रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अपने मुझे माफ किया। और अन्य ने कहा, मैंने पत्नी से शादी की है इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। कोई भी बहाना एक वास्तविक आवश्यकता पर स्थापित नहीं किया गया था। जिस आदमी को अपनी जमीन के टुकड़े को देखने की जरूरत है वह पहले ही खरीद चुका था। उनकी जल्दबाजी और देखने के लिए यह तथ्य के कारण था कि उनकी रुचि उनके खरीद में अवशोषित हो गई थी।
बैलों को भी खरीदा गया था। उन्हें साबित करना केवल खरीदार के हित को संतुष्ट करना था। तीसरे की वजह से कोई ज्यादा समानता नहीं थी। तथ्य ये हैं कि इच्छित अतिथि ने एक पत्नी से शादी की थी। उसे दावत में अपनी उपस्थिति को रोकने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी पत्नी का भी स्वागत किया जाता। लेकिन भोग के लिए उनकी योजनाएं थीं और ये उन्हें उस दावत की तुलना में अधिक वांछनीय लगता था जिसमें उन्होंने भाग लेने का वायदा किया था। उन्होंने मेजबान की तुलना में अन्य समाज में खुशी पाना सीख लिया था। उन्होंने बहाना नहीं बनाया था। अपने इनकार में शिष्टाचार का ढोंग भी नहीं किया। मैं नहीं कर सकता, केवल सच्चाई के लिए एक घूंघट था। मुझे आने की परवाह नहीं है। सभी बहाने एक पूर्वाग्रहित मन को धोखा देते हैं। इन अभिप्रायचित मेहमानों के लिए अन्य चीजों सभी अवशोषित हो गई थीं। खुद को स्वीकार करने के लिए उन्होंने जो निमंत्रण स्वीकार किया था उसे अलग रख दिया था और उदार मित्र को उनकी अनिश्चितता का अपमान किया गया था।
महान भोज द्वारा मसीह सुसमाचार के माध्यम से दिए गए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रावधान स्वयं मसीह से कम नहीं है। वो रोटी जो स्वर्ग से नीचे आती है और उससे मोक्ष की धाराएं बहती है। प्रभु के दूतों ने यहूदियों को उद्धारकर्ता के आगमन की घोषणा की थी। उन्होंने मसीह को ईश्वर के मेमने के रूप में इंगित किया था जो दुनिया के पाप को दूर करता है। यूहन्ना 1:29। उन्होंने जो दावत दी थी उसमें ईश्वर ने उन्हें सबसे बड़ा उपहार दिया था जो स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, एक उपहार जो गणना से परे है। ईश्वर के प्रेम ने महंगे भोज को सुसज्जित किया था जो एक निबोध संसाधन प्रदान करता था। यदि कोई व्यक्ति इस रोटी को खाता है, मसीह ने कहा, वो हमेशा जीवित रहेगा। यूहन्ना 6:51। लेकिन सुसमाचार की दावत के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए उन्हें मसीह और उसकी धार्मिकता प्राप्त करने के एक उद्देश्य के लिए उपादेय सांसारिक हितों को बनाना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य के लिए सभी दिया और वो उसे अपनी सेवा को हर सांसारिक और स्वार्थी और विचार से ऊपर रखने के लिए कहता है। वो विभाजित हृदय को स्वीकार नहीं कर सकता। सांसारिक प्रेमों में लीन हृदय को ईश्वर तक नहीं पहुंचाया जा सकता।
हर समय के लिए सबक हैं। हम परमेश्वर के मेमने का अनुसरण करते हैं जो भी वो चाहता है। उनका मार्गदर्शन चुना जाता है। उनका साहचर्य सांसारिक मित्रों के साहचर्य से ऊपर है। मसीह कहता है, वो जो मुझसे अधिक पिता या माता को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है, और वो मुझसे अधिक पुत्र या पुत्री को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 10:37। परिवार की मंडली के चारों ओर जब उनकी रोज की रोटी तोड़ी जाती थी तो मसीह के दिनों में कई लोगों ने शब्दों को दोहराया, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, धन्य है वो जो परमेश्वर वे राज्य में रोटी खाएगा। लेकिन मसीह ने दिखाया कि अनंत लागत पर उपलब्ध मेज के लिए मेहमानों को खोजना कितना मुश्किल था। जो लोग उनकी बातें सुनते थे वे जानते थे कि उन्होंने दया का निमंत्रण थोड़ा कम कर दिया है। उनके लिए सांसारिक संपत्ति, धन और मुख्य सभी अवशोषित थे। एक सहमति से उन्होंने बहाना बनाया था,
तो अब ये है,
जिन बहानों को निमंत्रण के लिए मना करने के लिए आग्रह किया, तो इंजील के निमंत्रण को मना करने के लिए बहाने की पूरी जमीन को कवर किया। पुरुष यह घोषणा करते हैं कि वे सुसमाचार के दावों पर ध्यान देकर अपनी सांसारिक संभावनाओं को उजागर नहीं कर सकते। अनंत काल की चीजों की तुलनाएं वे अपने लौकिक अंत संबंधी को अधिक महत्व दे सकते थे। ईश्वर से मिले बहुत आशीर्वाद से वे अपनी रचनाकारों और उद्धारक से अपनी नहीं होंगे, और वे दया के दूत से कहते हैं, इस समय के लिए जाऊं, जब मेरे पास एक सुविधाजनक मौसम होगा तो मैं तुम्हारे लिए पुकार करूंगा। प्रेरितों के काम 24 आयत 25। अन्य लोग उन कठिनाइयों का आग्रह करते हैं जो उनके सामाजिक संबंधों में उत्पन्न होती है। क्या उन्हें ईश्वर की पुकार परिचितों के साथ सामंजस्य नहीं रख सकते? इस प्रकार वे अपने आप को दृष्टांत में वर्णित बहुत अभिनेता साबित होते हैं। दावत के मास्टर ने उनके आमंत्रण के लिए अवमानना दिखाने के रूप में अपने भड़काने वाले उत्तेजनाओं दिखाया है। उस आदमी ने कहा, मैंने एक पत्नी से शादी की है और इसलिए मैं नहीं आ सकता, एक बड़ी कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों या अपने पति को ईश्वर की पुकार सुनने से रोकते हैं। पति कहता है, मैं अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद अपने कर्तव्य के प्रति विश्वास नहीं रख सकता। मुझे झुकाव मुझे ऐसा करने के लिए बहुत कठिन बना देगा। पत्नी ने करुण पुकार सुनी, आओ, क्योंकि सब चीजें तैयार हो गई हैं। और वो कहती है, मैं प्रार्थना करती हूं कि तुमने मुझे बहाना बना दिया है। मेरा पति दया के निमंत्रण को मना कर देता है। वो कहता है कि उसका व्यवसाय मार्ग में है। मुझे अपने पति के साथ जाना चाहिए और मैं नहीं आ सकता। बच्चों का दिल प्रभावित होता है, वे आने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे अपने माता और पिता से प्यार करते हैं, और चूंकि ये सुसमाचार की पुकार पर ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि उनके आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वे यह भी कहते हैं, क्या मैंने बहाना बनाया? इन सभी ने उद्धारकर्ता की पुकार को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि वे परिवार के घेरे में विभाजन से डरते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर को मानने से इनकार करने पर वे घर की शांति और समृद्धि का बीमा कर रहे हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। जो स्वार्थ बोते हैं वे स्वार्थ काटेंगे। मसीह के प्रेम को अस्वीकार करते हैं जो अकेले ही मानव प्रेम को पवित्रता और दृढ़ता प्रदान करते हैं। वे न केवल स्वर्ग को खो देंगे, परंतु उस सच्चे आनंद को खो देंगे जिसके लिए स्वर्ग का त्याग किया गया था। दृष्टांत में दावत के दाता ने सीखा है कि कैसे उसके निमंत्रण को लिया गया था, और उसने क्रोधित होकर नौकर से कहा, शहर की सड़कों और गलियों में जाऊं और गरीबों, अंधों और असहायों को दावत में लाऊं। मेजबान उन लोगों से मुखातिब हुआ जिन्होंने उसके इनाम को तुच्छ जाना, और एक ऐसे लोगों को बुलाया जो भरे हुए नहीं थे, जो बेघर थे। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो गरीब और भूखे थे, जो उसकी दावत का सम्मान करेंगे। जनता और वैश्याए, मसीह ने कहा, तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। मत्ती 21 आयत 31। जब भी मनहूस इंसानियत का नमूना हो सकता है कि आदमी ईश्वर की सूचना और प्रेम के लिए बहुत कम बहुत अधिक मनहूस नहीं हो सकते हैं। मसीह थके हुए और उत्पीड़ित लोगों की देखभाल करना चाहता है। वह उन्हें प्रकाश और खुशी और शांति देने के लिए तरसता है जो कहीं और नहीं मिलती है। सबसे बुरा पापी उसकी गहरी, सबसे मजबूत दयालु वस्तु है। वो अपनी पवित्र आत्मा को कोमलता के साथ उन पर बरसने के लिए भेजता है, उन्हें अपने आप को आकर्षित करने की मांग करता है। गरीब और अंधों को लाए सेवक ने अपने गुरु को सूचना दी, ऐसा किया जाता है कि अभी और स्थान खाली है। प्रभु ने नौकर से कहा, राजमार्गों और सड़क के किनारे लोगों को लेकर आऊं, तब मेरा घर भर जाएगा। यहां मसीह ने दुनिया के राजमार्गों और उपमार्गों बीमार यहूदी धर्म के बाहर सुसमाचार के कार्य दी और संकेत किया है। इस आज्ञा का पालन करने के लिए पौलुस और बरनबास ने यहूदियों को घोषित किया, यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले आपसे बोला जाए, लेकिन आपको देखकर कहा गया
और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के अयोग्य समझने के लिए जो हम बारी करते हैं अन्य जातियों ने, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों का प्रकाश बनाने के लिए निर्धारित किया है कि तुम पृथ्वी के सिरों पर उद्धार के लिए रहूं। जब अन्य जातियों ने यह सुना तो वे प्रसन्न हुए और गौरवान्वित हुए। प्रभु के वचन और अनंत जीवन के रूप में कई में माना जाता था। प्रेरितों के काम 13:46-48। मसीह के चेलों द्वारा घोषित सुसमाचार संदेश दुनिया के लिए उनके पहले आगमन की घोषणाएं थी। ये पुरुषों को उनके विश्वास के माध्यम से उद्धार की अच्छी खबर देता है। ये उनके लोगों को भुनाने के लिए उनके दूसरे आगमन की ओर इशारा करता है और ये पुरुषों के सामने आशा, विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से सेट करता है और संतों की विरासत को प्रकाश में साझा करता है। ये संदेश आज पुरुषों को दिया जाता है और इस समय इसके साथ मिलकर मसीह के दूसरे आगमन की घोषणा करता है। जो संकेत उन्होंने खुद दिए थे वे पूरे हुए और परमेश्वर के वचन को सिखाने में हम जान सकते हैं कि प्रभु द्वार पर है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले सुसमाचार संदेश के उद्घोषण को पूर्व निर्धारित करता है। वो स्वर्ग के बीच में एक स्वर्गदूत के रूप में उड़ान भरता है जो हमेशा के लिए उन्हें प्रचार करने के लिए सुसमाचार देता है जो पृथ्वी पर और हर देश में और दयालु और जीव और लोगों को कहते हैं, ईश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। प्रकाशित वाक्य 14:6-7। भविष्यवाणी में फैसले की यह चेतावनी इसके जुड़े संदेशों के साथ स्वर्ग के बादलों में मनुष्य के पुत्र के आने के बाद है। निर्णय की उद्घोषणा मसीह के द्वितीय आगमन की घोषणा है। इस उद्घोषणा को सार्वकालिक कहा जाता है। इस प्रकार मसीह के दूसरे आगमन के उपदेश, इसकी महत्ता की घोषणा, सुसमाचार संदेश का एक अनिवार्य हिस्सा दिखाया गया है। बाइबल घोषणा करती है कि अंतिम दिनों में पुरुष सांसारिक कार्यों में सुख और धन प्राप्ति में लीन हो जाएगा। वे शाश्वत वास्तविकताओं से अंधे होंगे। मसीह कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। क्योंकि बाद से पहले दिनों में वे खा पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, जब तक नूह ने कश्ती में प्रवेश नहीं किया और जब बाढ़ आई और उन्हें बहा कर ले गई। उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आगमन होगा। मत्ती 24:37-39। तो ये आज है। पुरुष लाभ के लिए पीछा कर रहे हैं और भोग के लिए स्वार्थी हैं, जैसे कि कोई ईश्वर नहीं है और ना होगा। नूह के दिनों में बाढ़ की चेतावनी पुरुषों को उनकी दुष्टता में घबराने और उन्हें पश्चाताप करने के लिए भेजा गया था। इसलिए मसीह के जल्द आने का संदेश सांसारिक चीजों में उनके अवशोषण से पुरुषों को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन्हें शाश्वत वास्तविकताओं की भावना के लिए जगाने का इरादा है कि वे प्रभु की मेज पर निमंत्रण देने के लिए ध्यान दें। सुसमाचार का निमंत्रण पूरी दुनिया को दिया जाता है, हर देश को और देश और जाति और लोगों को। प्रकाशित वाक्य 14:6। चेतावनी और दया का अंतिम संदेश पूरी पृथ्वी को अपनी महिमा के साथ हल्का करना है। ये अमीर और गरीब, उच्च और निम्न, सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाना है। राजमार्गों और सड़कों पर जाओ, मसीह कहते हैं, और आने के लिए मजबूर करें कि मेरा घर भर जाए। सुसमाचार की चाह के लिए दुनिया खत्म है, ईश्वर वचन के लिए अकाल है। ऐसे कुछ है जो मानव परंपरा के साथ शब्द का प्रचार करते हैं। यद्यपि पुरुषों के हाथ में बाइबल होती है, उन्हें सेवकों से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का आह्वान करता है। चिरस्थाई जीवन का वचन उन्हें देना चाहिए जो अपने पापों में डूबे हुए हैं। राजमार्गों और सड़कों में जाने की आज्ञा में मसीह उन सभी के कार्यों को निर्धारित करता है जिन्हें वो अपने नाम से मंत्री बताता है। पूरी दुनिया मसीह के सेवकों के लिए मैदान है। पूरा मानव परिवार उनकी मंडली में शामिल है। प्रभु की इच्छा है कि उनकी कृपा का शब्द हर आत्मा को घर ले आए।
बहुत हद तक ये व्यक्तिगत श्रम द्वारा पूरा किया जाता है। ये मसीह की योजना थी। उनका काम काफी हद तक व्यक्तिगत साक्षात्कार से बना था। उनके पास एक दिवसीय दर्शकों के लिए वफादार संबंध था। उस एक आत्मा के माध्यम से संदेश से अक्सर हजारों तक बढ़ाया जाता था। हम आत्माओं को हमारे पास आने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमें उनकी तलाश करनी चाहिए जहां वे है। जब वचन का पुलपिट से प्रचार किया गया है तो काम शुरू हो गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी भी सुसमाचार तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि ये उन तक ना पहुंचाया जाए। दावत का निमंत्रण सबसे पहले यहूदियों को दिया गया था, जिन लोगों को शिक्षकों और नेताओं के रूप में पुरुषों के बीच खड़े होने के लिए बुलाया था। वे लोग जिनके हाथों में भविष्यवाणी का समाचार था जो प्रतिबद्ध किया गया था अपने मिशन को आगे बढ़ाने में। यदि पुजारी और लोक की बुलाहट को ध्यान में रखते तो वे दुनिया को सुसमाचार का निमंत्रण देने में मसीह के दूतों को एकजुट होते। सच्चाई उन्हें भेजी गई थी कि वे इसे लागू करें। जब उन्होंने बुलाहट से इनकार कर दिया तो वे इसे गरीबी, नौकरानियों, पड़ावों और अंधों के पास भेज दिया गया। जनता और पापियों को निमंत्रण मिला। जब सुसमाचार को अन्य जातियों को भेजा जाता है तो काम करने की यही योजना होती है। संदेश राजमार्गों में दिया जाता है उन लोगों के लिए जो दुनिया के काम में सक्रिय भाग लेते हैं। लोगों के शिक्षकों और नेताओं को, प्रभु के दूतों को यह ध्यान में रखना चाहिए। झुंड के चरवाहों के लिए शिक्षकों को दैवीय रूप से नियुक्त किया जाता है। यह एक वचन के रूप में आना चाहिए जो कि ध्यान में रखा जाए। जो लोग समाज के बाधों की श्रेणी में आते हैं उन्हें कोमल स्नेह और भाईचारे सहित रहना चाहिए। व्यावसायिक जीवन में पुरुष विश्वास के उच्च पदों पर बड़े आविष्कारशील संकायें और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के साथ पुरुष सुसमाचार के शिक्षक, जिनके मन को इस समय के लिए विशेष सत्यों ने नहीं बुलाया गया है, ये पहले होना चाहिए। पुकार सुन ले, उनके लिए आमंत्रण देना होगा। धनी के लिए एक काम करना है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी के लिए जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग का उपहार दिया जाता है। उन्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि उन्हें एक खाता दिया जाना चाहिए जो जीवित और मृत लोगों का न्याय करेगा। धनी व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम और भय में आपके श्रम की आवश्यकता होती है। बहुत बार यह अपने धन पर भरोसा करता और अपने खतरे को महसूस नहीं करता है। इसके मन की आंखों को स्थायी मूल्य की चीजों को और आकर्षित करने की आवश्यकता है। उसे सच्चाई, अच्छाई के अधिकार को पहचानने की जरूरत है जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। मत्ती 11 आयत 28 से 30। जो लोग दुनिया में उच्च शिक्षा, धन या पुकार के लिए खड़े हैं, वे शायद ही कभी आत्मा के हितों के संबंध में संबोधित किए जाते हैं। कई मसीह कार्यकर्ता इन वर्गों से संपर्क करने में संकोच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आदमी डूब रहा होता है तो हम उनके साथ नहीं खड़े होते हैं और उसे नष्ट होते देखते हैं, क्योंकि वो एक वकील, व्यापारी या एक न्यायाधीश था। यदि हम व्यक्तियों को एक उपद्रव में भागते हुए देखते हैं तो हम उन्हें वापस आग्रह करने में संकोच नहीं करेंगे, जो भी उसकी स्थिति और बुलाहट होती है। न ही हमें आत्मा के संकट के पुरुषों की चेतावनी देने में संकोच करना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं के प्रति भक्ति के कारण किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उच्च सामाजिक पदों में से कई दिल से और घमंड के बीमार हैं। वे एक शांति के लिए तरस रहे हैं जो उन्होंने नहीं की है। समाज के सबसे ऊंचे पद पर वे लोग हैं जो मोक्ष के लिए भूखे और प्यासे हैं। कई लोग मदद प्राप्त करते हैं यदि प्रभु के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करेंगे। एक दयालु तरीके से मसीह के प्यार से दिल निर्विदा बन गया। सुसमाचार संदेश की सफलता सीखे गए भाषणों, वाक्पटु प्रशासकों या गहन तर्कों पर निर्भर नहीं करती है। ये संदेश की सरलता और जीवन की रोटी के लिए भूखी आत्माओं के लिए इसके अनुकूल पर निर्भर करता है। मुझे बचने के लिए क्या करना होगा? ये आत्मा की इच्छा है।
सबसे सरल और विनम्र तरीके से हजारों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। सबसे अधिक बुद्धिजीवी, जिन्हें दुनिया के सबसे अधिक उपहार प्राप्त पुरुषों और महिलाओं के रूप में देखा जाता है, वे अक्सर ईश्वर से प्यार करने वाले व्यक्ति के सरल शब्दों से तरोताजा हो जाते हैं और जो उस प्रेम को स्वाभाविक रूप से बोल सकते हैं, जैसे कि दुनिया की उन चीजों की बात करती है जो उनकी रुचि रखते हैं। सबसे गहराई से अक्सर अच्छी तरह से तैयार और अध्ययन किए गए शब्दों का प्रभाव कम होता है, लेकिन प्राकृतिक सादगी में बोली जाने वाली ईश्वर के पुत्र या पुत्री की सच्ची ईमानदार अभिव्यक्ति में यह सुनने की शक्ति है कि लंबे समय से मसीह और उसके प्रेम के खिलाफ जो उन्हें अपने दिलों को बंद कर रखा वो खुल जाएगा। मसीह के लिए कार्यकर्ता को याद रखे कि वो अपने बल पर शम करने के लिए नहीं है, उसे बचाने के लिए। उसकी शक्ति में विश्वास के साथ ईश्वर के सिंहासन को धारण करने दे। उसे प्रार्थना में ईश्वर के साथ बहस करने, वे फिर ईश्वर से उसे दी गई सुविधाओं के साथ काम करें। पवित्र आत्मा को उनकी दक्षता के रूप में प्रदान किया जाता है। दिलों को प्रभावित करने के लिए सेवक स्वर्गदूत उसकी तरफ से होंगे। अगर यरूशलम के नेताओं और शिक्षकों ने मसीह के लाए हुए सत्य को प्राप्त किया होता तो उनके शहर का मिशनरी केंद्र बन गए होता, पिछड़ा इज़राइल परिवर्तित हो गया होता, प्रभु के लिए एक विशाल सेना एकत्रित की गई होती और वे कितनी तेजी से दुनिया के सभी हिस्सों में सुसमाचार को ले जा सकते थे। इसलिए अब यदि प्रभाव के पुरुष और उपयोगिता के लिए बड़ी क्षमता मसीह के लिए जीती जा सकती है, तो उनके माध्यम से गिरे हुए को उठाने या बाहर करने में इकट्ठा और मोक्ष की खाई को दूर तक फैलाने में काम पूरा हो सकता है। तेजी से आमंत्रण दिया जा सकता है कि ईश्वर की ओर से मेहमानों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन हम गरीब वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने के लिए केवल महान प्रतिभाशाली पुरुषों के विषय में नहीं सोचते हैं। अपने दूतों को मसीह निर्देश देता है कि वे सड़कों और उन दरिंदों के पास जाएं जो धरती के एक कोने में हैं। महान शहरों के न्यायालयों और गलियों में देश के एकाकी मार्गों में परिवार और व्यक्ति है, शायद एक अजीब भूमि में अजनबी जो चर्च संबंधे के बिना है और जो अपने अकेलेपन में महसूस करने के लिए आते हैं कि ईश्वर उन्हें भूल गए हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें बचने के लिए क्या करना चाहिए।
कई पाप में डूब गए हैं, बहुत से संकट में हैं। वे दुख, इच्छा, अविश्वास, निराशा के साथ दबाए जाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों में हर प्रकार के रोग उन्हें प्रभावित करते हैं। वे अपनी परेशानियों का हल ढूंढने में लंबे समय से लगे हुए और शैतान उन्हें उन वासनाओं और सुखों में तलाश करने के लिए प्रेरित करता है जो बर्बादी और मौत का कारण बनते हैं। वह उन्हें सदोम का सेब भेंट कर रहा है जो उनके होठों पर राख बन जाएगी। वे उसके लिए अपने पैसा खर्च कर रहे हैं जो रोटी नहीं है, और उसके लिए उसका श्रम जो संतुष्ट नहीं है। इन पीड़ितों में हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें मसीह बचाने आया था। उनके लिए उनका निमंत्रण है, अहो सब प्यासे लोगो, पानी के पास आओ। दूध बिन रुपए और बिना ही आकर ले जो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम रुपया लगाते हो जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु ये खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर अटल करुणा की वाचा। यशाया 55 आयत 1-3। ईश्वर ने एक विशेष आज्ञा दी थी कि हमें अजनबी, निर्वासित और गरीब आत्माओं को नैतिक शक्ति में कमजोर है जो उनका साथ देना चाहिए। कई जो धार्मिकता के प्रति पूर्ण उदासीन दिखाई देते हैं, वे आराम और शांति के लिए तरसते हैं, हालांकि वे बहुत गहराई तक पाप में डूब चुके हैं, लेकिन उन्हें बचाने की संभावना है।
मसीह के सेवक उसकी मिसाल पर चलते हैं। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो उसने दुख को कम किया और बीमारों को चंगा किया। फिर उसने उनके राज्य के संबंध में महान सत्य उनके सामने रखा।
ये उनके अनुयायियों का काम है। जैसा कि आप शरीर को पीड़ित करने से राहत पाते हैं, आप आत्मा की इच्छा के लिए मंत्री बनाने के तरीके पाएंगे। आप उत्थानकर्ता को इंगित कर सकते हैं और महान चिकित्सक के प्यार के बारे में बता सकते हैं, जिसके पास अकेले बहाल करने की शक्ति है। खराब निराशा वाले लोगों को बताए जो भटक गए हैं कि उन्हें निराशा की जरूरत नहीं है। यद्यपि वे मिट गए हैं और सही चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए खुशी है, यहां तक कि उनके उद्धार की खुशी भी। वो स्पष्ट रूप से निराशाजनक सामग्री लेने के लिए प्रसन्न होता है, उन लोगों के माध्यम से जिनके द्वारा शैतान ने काम किया है और उन्हें उनकी कृपा के विषय बनाते हैं। वो उन्हें प्रकोप से छुड़ाने के लिए आनंदित होते हैं जो अवज्ञाकारी है। उन्हें बताए कि हर आत्मा के लिए चिकित्सा सफाई है, प्रभु की मेज पर उनके लिए एक जगह है। वो उनके स्वागत के लिए बोली लगाने का इंतजार कर रहे हैं।
जो लोग उपमार्ग और सड़कों में जाते हैं, वे व्यापक रूप से अलग चरित्र के अन्य लोगों को पाएंगे, जिन्हें उनकी सेवकाई की आवश्यकता है। ऐसे लोग हैं जो अपने पास मौजूदा सभी रोशनी तक जी रहे हैं और ईश्वर को सबसे अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो वो जानते हैं कि कैसे, लेकिन उन्हें एहसास है कि उनके लिए और उनके बारे में उन लोगों के लिए एक बड़ा काम होना है। वे ईश्वर के गुप्त ज्ञान के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल अधिक से अधिक प्रकाश की चमक को देखना शुरू कर दिया है। वे आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें आशीर्वाद भेजेंगे जो विश्वास से वे दूर करते हैं। महान नगरों की दुष्टता के बीच इनमें से कई आत्माओं को ढूंढा जाना है। उनमें से कई बहुत ही विनम्र परिस्थितियों में हैं और इस वजह से उनका ध्यान दुनिया की ओर नहीं है। उनमें से कई सेवक और कलीसियों के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन नीच दयनीय स्थानों में वे प्रभु के साक्षी हैं। उनके पास मसीह प्रशिक्षण के लिए थोड़े हल्के अवसर हो सकते हैं, लेकिन नग्नता, भूख और ठंड के बीच वे दूसरों को सेवक बनाना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा प्रकट करने वाले भक्तों को इन आत्माओं की तलाश है। उनके घरों की यात्रा कर उनकी आवश्यकताओं के लिए पवित्र आत्मा सेवक की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। उनके साथ बाइबल का अध्ययन करें और उनके साथ उस सादगी से प्रार्थना करें जो पवित्र आत्मा को प्रेरित करते हैं। मसीह अपने सेवकों को एक संदेश देगा जो आत्मा को स्वर्ग की रोटी की रूप में होगा। घर परिवार से दिल से कीमती आशीषें मिलेगी।
दृष्टांत में दिए गए आदेश उन्हें अंदर आने के लिए मजबूर करते हैं अक्सर गलत व्याख्या की गई है। यह शिक्षक के रूप में माना जाता है कि हमें पुरुषों को सुसमाचार प्राप्त करने के लिए बाध्य करना चाहिए, लेकिन यह निमंत्रण के तत्कालिकता और प्रस्तुत किए गए सकत की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सुसमाचार कभी भी लोगों को मसीह में लाने के लिए बाध्य नहीं करता है। इसका संदेश है, वो हरेक जो प्यासा है तुम पानी में आओ। यशाया 55:1। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ, और जो कोई भी उसे जीवन का पानी स्वतंत्र रूप से लेने देगा। प्रकाशित वाक्य 22:17। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की शक्ति हमें आने के लिए विवश करती है। उद्धारकर्ता कहता है, देख मैं द्वार खड़ा हुआ खटखटाता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके घर के अंदर आकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। वह डांट फटकार से नहीं या धमकी देकर अलग हो जाता है, लेकिन लगातार खोए हुए लोगों की तलाश करता है। कहता है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? होशे 11:8। उसका प्यार जिद्दी दिल से वापस चला जाता है। वह अधिक बल के साथ विनती करता है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक देता हूं। उनके प्यार की जीत की शक्ति आत्माओं को अंदर आने के लिए मजबूर करती है, और मसीह के लिए वे कहते हैं, तेरी नम्रता ने मुझे महान बना दिया। भजन संहिता 18:35।
मसीह अपने दूतों को उसकी लालसा वाले प्रेम को प्रदान करेगा जो उसने खुद को खो जाने के लिए दिया है।
हम कोमल कहने के लिए नहीं आओ ऐसे लोग जो बुलाहट को सुनते हैं लेकिन उनके काम भी इसके अर्थ में लेने के लिए सुस्त हैं। उनकी आंखें, उनके आंसू, उनके लिए रखा हुआ कुछ भी अच्छा देखने के लिए अंधे है। बहुतों को अपने महान पतन का एहसास है। वे कहते हैं, मैं मदद करने लायक नहीं हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए। कोमलता से प्यार में निराशा और असहाय लोगों को पकड़ें। उन्हें अपनी हिम्मत, अपनी आशा, अपनी ताकत दे। दया से उन्हें आने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ में करुणा होती है, एक अंतर होता है। दूसरे लोग डर से बचाते हैं, उन्हें आग से बाहर निकालते हैं। यदि परमेश्वर के सेवक विश्वास में उसके साथ चलेंगे, तो वो उनके संदेश को शक्ति देगा। उन्हें अपने प्रेम और ईश्वर की कृपा को अस्वीकार करने के खतरे को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम किया जाएगा, ताकि पुरुषों को सुसमाचार स्वीकार करने के लिए विवश किया जा सके। यदि मनुष्य अपना ईश्वर प्रदत्त भाग करेंगे, तो मसीह अद्भुत चमत्कार करेगा। मानव हृदय में आज तक महान परिवर्तन हो सकता है, जैसा कि पिछली पीढ़ियों में कभी भी नहीं हुआ है। जॉन बनियन को अपवित्रता से बचाया गया था और गुलाम व्यवहार से जॉन न्यूटन को एक उत्थान उद्धारकर्ता घोषित करने के लिए। एक बनियन और न्यूटन के आज पुरुषों के बीच से छुड़ाया जा सकता है। मानव एजेंटों के माध्यम से जो परमात्मा के साथ सहयोग करते हैं, कई गरीब जो बाहर हैं उन्हें फिर से लाया जाएगा और उनकी बारी में मनुष्य ईश्वर की छवि को बहाल करना होगा। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कम अवसर हैं, जो त्रुटि के तरीके से चले हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रकाश के बीम किसके पास आएगो। जैसे कि मसीह का वचन जकई के पास आया, आज मुझे तेरे घर पर रहना है, लूका 19:5। इसलिए ये वचन उनके पास आएगा और जो पाप करने वाले थे उन्हें लगता है कि दिलों को कोमल समझेगे। एक बच्चे को क्योंकि मसीह ने उन्हें नोटिस करने के लिए नियुक्त किया है। बहुत से लोग गंभीर त्रुटि और पाप से आएंगे और दूसरे की जगह लेंगे, जिनके पास अवसर और विशेषाधिकार, लेकिन वो बेशकीमती नहीं है। कीमत। और जब मसीह उसके राज्य में आएगा तो वे उसके सिंहासन के पास खड़े होंगे। लेकिन यह देखो कि तुम उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। इब्रानियों 12:25। यीशु ने कहा, उन पुरुषों में से कोई भी जो बुलाए गए थे मेरे भोज का स्वाद न चखेगी। उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था और उनमें से किसी को भी फिर से आमंत्रित नहीं किया जाना था। मसीह को अस्वीकार करने में यहूदी अपने दिलों को सख्त कर रहे थे और खुद को शैतान की शक्ति में दे रहे थे, ताकि उनके लिए उनकी कृपा को स्वीकार करना असंभव हो जाए, जो अब ये है। यदि ईश्वर के प्रेम की सराहना नहीं की जाती है और आत्मा को नर्म और वश में करने के लिए एक प्रमुख सिद्धांत नहीं बन जाता है, तो हम पूरी तरह से खो जाते हैं। खोए हुओं ने अपने प्यार का कोई बड़ा रूप नहीं दिया है जितना उसे देना है। यदि यीशु का प्रेम हृदय को वश में नहीं करता है, तो कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा हम तक पहुंचा जा सकता है। हर बार जब आप दया का संदेश सुनने से इनकार करते हैं, तो आप अपने आप को विश्वास में मजबूत करते हैं। हर बार जब आप मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलने में विफल रहते हैं, तो आप उसे बोलने वाले की आवाज सुनने के लिए अधिक से अनिच्छुक हो जाते हैं। आप दया की आखिरी अपील पर प्रतिक्रिया देने के अपने अवसर को कम कर देते हैं। प्राचीन इज़राइल के रूप में ये आपके बारे में नहीं लिखा जाना चाहिए, एप्रैम मूर्तों में शामिल हो गया है, उसे अकेला छोड़ दो। होशे 4:17। जैसा कि उसने यरूशलेम पर रोते हुए कहा, मसीह ने तुम्हारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया है, जैसा कि एक मुर्गी ने अपने पंखों के नीचे अपने को इकट्ठा किया है, और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। लूका 13:34-35। हम उस समय में रह रहे हैं जब दया का आखिरी संदेश, आखिरी निमंत्रण पुरुषों के बच्चों को लग रहा है। आदेश राजमार्गों और सड़कों में जाओ अपनी अंतिम पूर्ति तक पहुंच रहा है। हर आत्मा को मसीह का निमंत्रण दिया जाएगा। संदेशवाहक कह रहे हैं,
आओ, क्योंकि चीजें अब तैयार हैं। स्वर्गीय स्वर्गदूत अभी भी मानव एजेंसियों के साथ सहयोग में काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आने के लिए, विवश करने के लिए हर इच्छा को प्रस्तुत कर रहा है। मसीह कुछ ऐसे संकेत के लिए देख रहा है जो बोल्टों को हटाने और उनके प्रवेश के लिए आपके दिल के द्वार को खोलने की शर्त लगाएगा। स्वर्गदूतों को स्वर्ग में समाचार पहुंचाने की प्रतीक्षा है कि एक और खोया हुआ पापी मिल गया है। स्वर्ग के मेजबान इंतजार कर रहे हैं और अपनी वीणा पर प्रहार करने के लिए गाना गा रहे हैं कि एक और आत्मा ने सुसमाचार की दावत का न्योता स्वीकार किया है।